दिन भर रविवार 29 नवंबर, मैं हूं निखिल रंजन। पेरिस में जलवायु पर चर्चा करने के लिए पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता। अलग अलग शहरों में रैलियां कर लोगों ने बनाया लंबे समय के लिए समझौते का दबाव। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी की पर्यावरण पर मन की बात।
मुझे खुशी है कि सार्क देशों की एक टेबल टॉप एक्सरसाइज और बेस्ट प्रैक्टिसेस का सेमिनार।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा सलमान रश्दी की किताब पर रोक लगाना गलत था। फैलाओ जियारा में आज कहानी विख्यात चित्रकार नयन सुख की।
असल में ये कहानी दो लोगों की है, एक चित्रकार की जिसने भारतीय कला को नई दृष्टि दी और एक राजकुमार की जिसने उस कलाकार को चित्र रचने की पूरी आजादी दी।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्लेस द रिपब्लिक के बाहर कार्यकर्ताओं ने हजारों जूतों की कतारें बना दी हैं। इन कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण में बदलाव पर ठोस समझौते की मांग को लेकर दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन जताने के लिए ऐसा किया है। सोमवार को पेरिस में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन शुरू हो रहा है, लेकिन पेरिस हमलों की वजह से यहां प्रदर्शनों पर रोक लगी हुई है। सिडनी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, वहीं लंदन, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो और मेक्सिको शहर में भी रैलियां आयोजित की जानी हैं। तुर्की ने कहा है कि रूसी पायलट का शव बरामद कर लिया गया है, जिसे जल्द ही रूस को लौटा दिया जाएगा। सीरिया की सीमा के पास तुर्की ने रूसी विमान गिरा दिया था, जिसे लेकर रूस और तुर्की के बीच तनाव बना हुआ है। विमान के एक पायलट को बचा लिया गया था और दूसरे पायलट की सीरियाई विद्रोहियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाउदोग्लू ने कहा तुर्की की वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले विमान के एक पायलट का शव सीरिया से बरामद कर लिया गया है। शव का संस्कार ऑर्थोडॉक्स परंपरा के अनुसार पादरियों ने किया है। हैते प्रांत के राज्यपाल से मेरी बात हुई है, रूसी अधिकारी हैते जाएंगे और शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाउदोग्लू के शब्द। नेपाल में पुलिस ने करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भारत के खिलाफ हड़ताल की योजना बना रहे थे। माओवादी पार्टी से जुड़े एक धड़े से जुड़े इन लोगों का आरोप है कि भारत ने नए संविधान में बदलाव के लिए नेपाल पर दबाव बनाने के लिए नाकेबंदी लगाई है। भारत इस आरोप से इनकार करता है। रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल में माओवादियों ने कई वाहनों को आग लगा दी है और स्कूलों और बाजारों को बंद करवाया है। तुर्की को यूरोपियन यूनियन जाने वाले प्रवासियों की संख्या पर काबू करने के लिए 3.2 अरब डॉलर की सहायता मिल सकती है। ब्रसेल्स में चल रही बैठक में यूरोप के प्रवासी संकट पर चर्चा में तुर्की को सहायता देने पर विचार हो रहा है। यूरोपियन यूनियन नेताओं और तुर्की के प्रधानमंत्री के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसके तहत तुर्की को अपनी सीमाओं पर नियंत्रण बढ़ाना होगा और यूरोप से वापस भेजे जाने वाले गैर कानूनी प्रवासियों को प्रवेश देना होगा। इसके एवज में तुर्की को आर्थिक सहायता और तुर्की के यात्रियों के लिए वीजा कानून में नरमी बरती जा सकती है। सऊदी अरब में स्थानीय चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रही महिलाओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अगले महीने सऊदी अरब में स्थानीय चुनाव होने हैं, जिनमें करीब 900 महिला उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं। सऊदी अरब में ये पहली बार है कि महिलाएं स्थानीय चुनाव में लड़ेंगी भी और उन्हें वोट भी डालने दिया जाएगा। हालांकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया में महिला उम्मीदवार पुरुषों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकेंगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप बीबीसी रेडियो और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। आज रविवार है और आपके साथ ही हमें भी इंतजार है मोहनलाल जी की, जो विशेष पेशकश होती है हर रविवार को फैलाओ जियारा, उसकी उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें ले लेते हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के बड़े नेताओं के पेरिस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें तकरीबन 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन को COP21 नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य है कार्बन के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए एक दीर्घकालिक समझौता कायम करना। इस सम्मेलन से पहले दुनिया भर के कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अलग अलग शहरों में रैलियां आयोजित की है। इन रैलियों के जरिए सम्मेलन में भाग ले रहे नेताओं से जलवायु परिवर्तन को लेकर ठोस और दीर्घकालिक समझौते करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बड़ी संख्या में लोग इन रैलियों में शामिल हुए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने दुनिया भर के कई नेता पेरिस पहुंचे हैं। 11 दिसंबर तक चलने वाले COP21 नाम के इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 40,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इसका मकसद कार्बन के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए शामिल देशों के बीच एक दीर्घकालिक समझौता कायम करना है। कहा जा रहा है कि पेरिस में हाल में हुए चरमपंथी हमले के बाद इस किस्म के समझौते की संभावना बढ़ गई है। उधर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक समझौते की अपील करते हुए दुनिया भर में कई जगह आयोजित हो रही रैलियों में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों के अलावा बांग्लादेश, जापान और दक्षिण अफ्रीका में भी इस तरह की रैलियां हुई हैं। इसके साथ ही लंदन, न्यूयॉर्क, रियो डे जेनेरियो और मैक्सिको सिटी में भी इसी तरह की रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इन रैलियों में शामिल प्रदर्शनकर्ता एक ऐसे समझौते की मांग कर रहे हैं जिससे वैश्विक तापमान में हो रही बढ़त को कम करते हुए औद्योगिकीकरण के दौर से पहले की तरह 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुई रैली में तकरीबन 10,000 से अधिक लोग जुटे। इनमें शामिल मैट बैकहाउस कहते हैं, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मसला है जिससे हम अभी जूझ रहे हैं और इसका असर हमारे बच्चों और उनके बच्चों पर कई सालों तक दिखाई देगा। मुझे लगता है कि हम ऐसी आखिरी पीढ़ी है जो इस मसले पर कुछ कर सकती है और ये बेहद जरूरी है कि हम इस पर कोई ठोस कदम उठाएं। ये थे सिडनी की रैली में शामिल मैट बैकहाउस के शब्द। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी कई लोग इसी तरह के प्रदर्शनों में शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल जुडे ली ने बताया, हम 21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भाग ले रहे दुनिया भर के नेताओं से यह मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब अक्षय ऊर्जा का 100% तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए अब ये बेहद जरूरी है। ये थे सियोल की एक रैली में शामिल जुडे ली के शब्द। उधर पेरिस में भी डे ला रिपब्लिक नाम की जगह में दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शनों के साथ प्रतीकात्मक एकजुटता दिखाते हुए पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हजारों जूतों को कतारबद्ध करते हुए एक प्रदर्शन किया है। पेरिस में इस मसले पर होने वाली रैली को पेरिस हमलों के चलते सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जूतों को कतारबद्ध कर सांकेतिक प्रदर्शन का फैसला लिया। इस बीच पूर्व वैश्विक नेताओं के द एल्डर्स नाम के एक समूह ने चेतावनी दी है कि पेरिस में हो रहा ये सम्मेलन किसी दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने का एक आखिरी मौका है। नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड भी द एल्डर्स की सदस्य हैं। वे कहती हैं,
देयर इज नो मोर टाइम टू लूज, आई मीन कोपेनहेगन,
अब और ज्यादा वक्त नहीं गंवाया जा सकता। मेरा मतलब है कि कई तरह से कोपेनहेगन को अवसर खो देने की तरह देखा जा रहा है। ये भी 6 साल पहले की बात है। अब ये वो वक्त है जब हम सब इसे लेकर वाकई गंभीर हैं। मुझे उम्मीद है कि हम एक ऐसे समझौते पर पहुंचेंगे जिसमें भविष्य का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि ये अपने आप में काफी नहीं है, लेकिन इससे एक बेहद अहम शुरुआत होगी और अगर हम पेरिस में किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुँचते तो ये बेहद त्रासद होगा।
ये थे नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड के शब्द। उधर माल्टा में हो रही राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं की एक बैठक में भी पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से एक मजबूत समझौते की उम्मीद जताई जा रही है।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। पेरिस के जलवायु सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आज रेडियो पर मन की बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण की समस्या अब काफ़ी बड़ी हो गई है और इसे लड़ने के लिए क्षमता को विकसित करने की ज़रूरत है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ रहा है ये अब हम लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जब ये चारों तरफ संकटों की बातें देखते हैं तो हमें इसमें काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता हो गई है। आज से 15 साल पहले प्राकृतिक आपदा ये कृषि विभाग का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि तब ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आपदा यानी अकाल यहीं तक सीमित था। आज तो इसका रूप ही बदल गया है। हर लेवल पे हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना बहुत अनिवार्य हो गया है। सरकारों ने, सिविल सोसाइटी ने, नागरिकों ने, हर छोटी मोटी संस्थाओं ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना ही पड़ेगा। नेपाल के भूकंप के बाद मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान नवाज शरीफ से बात की थी और मैंने उनसे एक सुझाव दिया था कि हम सार्क देशों ने मिलकर के डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए एक जॉइंट एक्सरसाइज करना चाहिए। मुझे खुशी है कि सार्क देशों की एक टेबल टॉप एक्सरसाइज और बेस्ट प्रैक्टिसेस का सेमिनार वर्कशॉप दिल्ली में संपन्न हुआ, एक अच्छी शुरुआत हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि सलमान रुश्दी की किताब पर रोक लगाना गलत था। सलमान रुश्दी की किताब सटनिक वर्सेज काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही है और भारत में इस पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये रोक अभी कायम है। एक कार्यक्रम में चिदंबरम ने बड़ी साफगोई से कहा कि इस पर रोक लगाना गलत था। चिदंबरम का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश में असहिष्णुता के मुद्दे पर आए दिन कोई ना कोई विवाद, बयान या फिर घटना सामने आ रही है। मैंने अबसे कुछ ही देर पहले वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम थानवी से पूछा कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता को ये बयान देने की क्यों जरूरत पड़ गई।
ऐसे बयान से भारतीय जनता पार्टी पर जो कांग्रेस का हमला है उसको थोड़ा औचित्य मिलता है। दूसरी बात यह है कि देर सवेर अगर कोई अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो अच्छी बात ही है, इसमें कोई बुराई है नहीं। लेकिन अगर आप भूल स्वीकार करते हैं तो फिर लंबी सूची है। कांग्रेस के दौर में सिर्फ सेटनिक वर्सेज के ऊपर बैन नहीं लगा था। इंदिरा गांधी के वक्त में आप देखिए लुई मॉल की फिल्म थी फैंटम इंडिया, आज तक भी भारत में उसको दिखाया नहीं जा सकता है। वो फैंटम इंडिया से लेकर के और आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें एक तरह से अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसका गला कांग्रेस के वक्त में भी घोटा गया है। बीबीसी का दफ्तर ही बंद करवा दिया था, उसके लिए भी तो माफी मांग लेनी चाहिए।
जिस तरह से इस वक्त असहिष्णुता को लेकर के चीजें चल रही हैं उसमें कांग्रेस की भूमिका को कितना सही देखते हैं आप?
देखिए, असहिष्णुता कांग्रेस के वक्त में भी कम नहीं थी। कांग्रेस का शासन लंबा रहा है और हमने असहिष्णुता के पता नहीं कितने उदाहरण कांग्रेस के वक्त में देखे हैं। लेकिन इतिहास से सबक लेना चाहिए, उसको कांग्रेस ने भी नहीं सीखा है और भारतीय जनता पार्टी का तो सीखने का सवाल नहीं है। ये इतनी बात मैं जरूर मानता हूँ कि जिस तरह से अब असहिष्णुता के मामले आ रहे हैं ऐसा पहले कभी भी नहीं था कि एक निरंतरता नजर आती हो और हत्या तक हो जाए और हत्या भी जो है वो सांप्रदायिक मामलों में हो, अभिव्यक्ति के लिए हो। आप एक बैन किताब के ऊपर लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं एक बात है, लेकिन आप लेखक की हत्या कर दें तो ये तो मतलब कहना चाहिए सारी हदें पार करने वाली बात होती है।
आपने कहा कि बीजेपी के तो सीखने का सवाल ही नहीं है, क्या बीजेपी को ज्यादा असहिष्णु मान रहे हैं?
उनकी विचारधारा जहाँ से आती है संघ की, उसमें इस तरह की असहिष्णुता कायम है, वो उनकी जड़ों में है। अगर वो सहृदयता और सहिष्णुता सिखाते आते तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई परवाह करता कि कौन खाता है, कौन क्या नहीं खाता है, क्या पहनता है, कैसे प्रेम करता है, किन जगहों पर प्रेम करता है। यानी ये सारी चीजें जो होती हैं नैतिकता के नाम पर और धर्म के नाम पर जिस तरह से कथित मूल्य बना दिए गए वो संघ ने बनाए और उनको भारतीय जनता पार्टी जो है उनके नेता निभाते हैं।
उनकी दलील है बीजेपी की कि वहां पर कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में जब हुआ तब भी वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है।
जब आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, तो इसका कोई मायना नहीं रह होता कि वहाँ पे सरकार किसकी काम कर रही है। वो असल में आप उस वक्त जाते हैं उस विचारधारा की तरफ जिसने वो हमला किया। मुंबई में जो हमला हुआ, क्या हम इस बात का ख्याल करते हैं कि उस वक्त कौन सी सरकार थी? अभी पेरिस में हमला हुआ है, उसमें आपने फ्रांस की सरकार को गुनहगार ठहराया। जब सांप्रदायिकता के मामले होते हैं, आतंकवाद के मामले होते हैं, वो सिर्फ कानून व्यवस्था के मामले नहीं है, वो उनसे ज्यादा बड़े मसले हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे एक कथित विचारधारा काम करती है।
तो क्या आपको लगता है कि सलमान रुश्दी की सैटनिक वर्सेस पर से प्रतिबंध हट सकेगा?
ये जो है ये तो उन्होंने बॉल एक तरीके से इनके पाले में डाल दी है ना शासन के, तो और ये जो शासन है उससे आप अगर ये आशा करते हो कि अब कांग्रेस ने कहा कि हमारी भूल थी और आप सुधार कर दीजिए, ये तो एक किस्म की राजनीतिक आप कहिए कि उनकी मतलब वो चाल चलने वाला काम हुआ। मुझको नहीं लगता कि ये सरकार जो है इसके लिए कांग्रेस को किसी भी रूप में कोई लाभ देने वाली है, चाहे कांग्रेस ने भली माफी मांग ली हो।
वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी। और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम फैला उजियारा का। फैला उजियारा प्रोफेसर सुनील खिलनानी के श्रृंखला इनकार्नेशंस की 20वीं कड़ी। आज हम आपको बता रहे हैं 18वीं सदी के एक ऐसे रचनाधर्मी चित्रकार नैनसुख के बारे में जिन्होंने लीक से हटकर भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया। हिंदी में आज की कड़ी पेश कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
भारतीय लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग अपने दौर की खूबसूरत पहचान है। गर्वीले शहजादों, गुंबदाकार इमारतों, कलाकारों, दरबारियों और खूबसूरत बाग बगीचों से सजी ये मुगलकालीन पेंटिंग्स चित्रकला की तकनीक के लिहाज से बेहद शानदार हैं। लेकिन ज्यादातर पेंटिंग्स में छवियां बेहद नपीतुली और तयशुदा नजर आती हैं, मानो कलाकार की कल्पना और संवेदना भी आश्रयदाता के अधीन हो। इन पेंटिंग्स में दोहराव साफ नजर आता है। कई चित्र तो मुगल बादशाहों के प्रचार लगते हैं।
Which is why it's bracing to turn in the study room of the Victoria and Albert Museum here in London.
ऐसे में यहाँ लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में सहेजे इन लघु चित्रों को देखकर सुखद आश्चर्य होता है। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला को एक नई ताजगी, नया अंदाज देने वाले इन चित्रों के मुख्य चरित्र हैं राजकुमार बलवंत सिंह। भारतीय कला के हिसाब से बेहद दिलचस्प इस किरदार की हैसियत भारत के राजे रजवाड़ों के बीच कुछ खास नहीं थी, लेकिन आज हम उन्हें जानते हैं तो इसलिए क्योंकि चित्रकार नैनसुख ने अपने कालजयी चित्रों में उन्हें अमर कर दिया। असल में ये कहानी दो लोगों की है, एक चित्रकार की जिसने भारतीय कला को नई दृष्टि दी और एक राजकुमार की जिसने उस कलाकार को चित्र रचने की पूरी आज़ादी दी। नैनसुख लघु चित्रों की पहाड़ी शैली के कलाकार हैं, लेकिन उनके चित्र पहले के चित्रकारों से बहुत अलग हैं। बेहद सटीक रेखाएं और चित्रों में खाली जगहों का बेबाक इस्तेमाल करने की उनकी अपनी खास शैली है। नैनसुख सूक्ष्म चित्रण के जरिए अपनी पेंटिंग के हर किरदार का अनूठापन सामने लाते हैं, फिर चाहे वो किरदार कोई गायक वादक हो, राजा हो या फिर खुद नैनसुख हो।
Here's a painting by Nansuk of Balwant Singh being entertained by a group of musicians and players.
नैनसुख की एक पेंटिंग है जिसमें गायकों वादकों का एक समूह बलवंत सिंह का दिल बहला रहा है। हुक्का पीते बलवंत सिंह की एक व्यक्ति नकल उतार रहा है। इस चित्र को थोड़ा और पास से देखें और प्रमुख गायक पर गौर करें तो नारंगी पगड़ी वाला एक दुबला पतला सा आदमी दिखता है जिसके चेहरे पर चेचक के निशान है। जब भी मैं नैनसुख की पेंटिंग देखता हूं तो मुझे उपन्यासकार V.S. नायपॉल की वो आलोचना याद आ जाती है कि भारतीय अपने आसपास की चीजों से अक्सर अनजान रहते थे, लेकिन नैनसुख की दृष्टि काफी सूक्ष्म थी। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में अपने आसपास के जीवन, कुदरती खूबसूरती और दरबारी जीवन में मौजूद स्वाभाविक हास्य व्यंग सभी को जगह दी। आप नैनसुख की जितनी ज्यादा पेंटिंग्स देखेंगे उतना ज्यादा आपको एहसास होगा कि वो मिनिएचर शैली के तयशुदा ढांचे से कितना ऊब चुके थे। उनकी कला दृष्टि बाकी सभी मिनिएचर चित्रकारों से अलग थी। उनकी रुचि कालीनों, अनोखे शामियानों किसी में नहीं थी। चित्रकार हार्वर्ड हॉजकिन नैनसुख की पेंटिंग्स के प्रशंसक और संग्रहकर्ता है।
इनमें से कोई चीज असल में महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो वास्तव में महान कलाकार थे। कई मुगल चित्रकारों की अपनी पहचान थी और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है, लेकिन मेरा मानना है कि नैनसुख भारत के पहले आधुनिक चित्रकार थे।
नैनसुख का जन्म 1710 में बेहद कुशल चित्रकारों के परिवार में हुआ। उनके पिता और भाई ने उन्हें उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की पहाड़ी चित्रशैली की शिक्षा दी। उस समय पहाड़ी शैली की पेंटिंग्स में प्राकृतिक दृश्यों या पहाड़ी घरों के चित्र बनाए जाते थे जिनकी पृष्ठभूमि एक रंगीय होती थी और चित्रांकन ज्यादातर स्थिर और गतिहीन। लेकिन नैनसुख की तरुणाई में पहाड़ी कला परंपरा का विकास होने लगा था। नैनसुख उसी दौर में चित्रकला सीख रहे थे जब ये शैलीगत बदलाव हो रहे थे और ऐसे में उन्हें परंपरागत कला में नए प्रयोग करने का अवसर मिला। नैनसुख की आत्मछवि की एक पेंटिंग है यानी कि उनका सेल्फ पोर्ट्रेट। इसमें वो करीब 20 साल के लगते हैं। पतला सा चेहरा, बारीक मूछें, लगभग घुटा हुआ सिर और कसकर बांधी गई पगड़ी के नीचे से झांकती चोटी। चित्र में उनका आगे निकला दांत भी दिख रहा है, यानी नैनसुख के लिए सौंदर्य के मुकाबले यथार्थ का अंकन ज्यादा जरूरी था। उनके बाएं हाथ में तख्ती है और दाएं हाथ में कूची जो तख्ती पर खाली कागज पर कुछ उकेरने ही वाली है। वो बहुत एकाग्र नजर आ रहे हैं, जैसे अपने मस्तिष्क में किसी छवि को सहेज रहे हों। जिस समय का ये सेल्फ पोर्ट्रेट है उसी के आसपास नयनसुख ने गुलेर में अपना घर छोड़ दिया और किसी संरक्षक की तलाश में निकल गए। उन्हें ये संरक्षक मिला जसरोटा में, जो उनकी प्रेरणा भी बना। जसरोटा वर्तमान हिमाचल प्रदेश में बसा एक छोटा सा पहाड़ी दुर्ग है। जसरोटा में नयनसुख ने जो शुरुआती पेंटिंग्स बनाई उनका स्वरूप काफी पारंपरिक था, लेकिन जल्द ही वो अपनी कला में नित नए प्रयोग करने लगे। वो रंगों के संयमित इस्तेमाल, चित्रों में खाली सफेद जगह छोड़ने और इस सबसे भी ज्यादा अपने संरक्षक के प्रस्तुतीकरण में प्रयोग करने लगे। उनके एक चित्र में बलवंत सिंह चुपचाप बैठे नाई से दाढ़ी बनवा रहे हैं तो दूसरे चित्र में कोई कलाकार उनकी नकल उतार रहा है। एक और चित्र में जिसमें बलवंत सिंह भारी भरकम कंबल ओढ़े बीमार और अवसादग्रस्त नजर आ रहे हैं। किसी और चित्र में वो अपने तंबू में खुले बदन में बैठे कोई खत लिख रहे हैं, जबकि उनका परिचारक जिसके हाथ में मक्खियां उड़ाने के लिए पंखा है गर्म दोपहरी में झपकी ले रहा है। ये सब बिल्कुल आधुनिक किस्म का यथार्थवादी चित्रांकन है।
And here's Nansuk painting Balwant Singh at prayer, performing a puja to Vishnu.
एक और चित्र में बलवंत सिंह भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। इस चित्र की रोचक बात यह है कि बलवंत सिंह ने कमर के ऊपर वस्त्र नहीं पहने हैं और वो थुलथुल दिखाई दे रहे हैं, पर नयनसुख को उनके इस मोटापे के चित्रण में कोई संकोच नहीं है और निश्चित ही बलवंत सिंह ने अपने इस तरह के चित्रांकन पर कोई आपत्ति नहीं की होगी। बीएन गोस्वामी भारत के अग्रणी कला इतिहासकार हैं।
He attached himself to this prince, who was not even a member of the main ruling family. He probably was a pretender to the throne.
वो राजकुमार बलवंत सिंह के संरक्षण में आ गए जो मुख्य राज परिवार के सदस्य भी नहीं थे, शायद सिंहासन के कोई दावेदार रहे हों। लेकिन नयनसुख ने बलवंत सिंह का साथ नहीं छोड़ा। नयनसुख बलवंत सिंह के साथ छाया की तरह लगे रहे, या शायद बलवंत सिंह नयनसुख की छाया बने रहे। मेरा मानना है कि नयनसुख जो कुछ चित्रित कर रहे थे, नए प्रयोग कर रहे थे, उस बारे में उन दोनों में जरूर चर्चा होती होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बलवंत सिंह ने उनसे ऐसा या वैसा कुछ खास करने को कहा होगा, लेकिन नयनसुख अपने संरक्षक के दिल की बात समझ लेते होंगे और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें भी चित्रित की, अपनी पेंटिंग्स में दर्ज की, जो मेरे ख्याल से किसी और भारतीय संरक्षक ने कभी सोची या चाही भी नहीं होंगी।
हार्वर्ड हॉजकिन की एक पसंदीदा पेंटिंग है जिसमें बलवंत सिंह ने गुलाबी जूतियां पहनी हैं, हाथ में तलवार है और बहुत ध्यान से कुछ देख रहे हैं, लेकिन किसे, हॉजकिन से ही सुनते हैं।
बलवंत सिंह अपनी पालतू बत्तख को देख रहे हैं जो अपने मालिक की नजरों से बंधी उन्हें ही ताक रही है। जहां तक मेरी समझ है, भारतीय चित्रकला के इतिहास में ये पेंटिंग अनूठी है। वो वास्तव में सच्चे अर्थों में संवेदनशील थे। असल में वो दोनों ही संवेदना के धनी थे।
नयनसुख और बलवंत सिंह दोनों को नृत्य और संगीत में गहरी रुचि थी और नयनसुख की कुछ बेहद जीवंत तस्वीरों का विषय दरबार में इन कलाओं का प्रदर्शन ही है। मेरी समझ से उनकी महानतम रचनाओं में से एक पेंटिंग है जिसमें संगीत, संरक्षक राजा और स्वयं चित्रकार सभी जीवंत हो उठे हैं। बलवंत सिंह अपने तख्त यानी कि सिंहासन पर बैठे हैं, उनके एक हाथ में हमेशा की तरह हुक्का है और दूसरे में एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग उन्हें नयनसुख ने दी है जो अपने संरक्षक के पीछे खड़े हैं। नयनसुख आगे की ओर झुके हाथ जोड़े खड़े हैं और उनके बाहर निकले दांत इस पेंटिंग में भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी पेंटिंग पर बलवंत सिंह की राय जानना चाहते हैं। चित्रकार और संरक्षक के सामने है संगीतकार और दरबारी, जिनमें से हर एक का चेहरा एक दूसरे से जुदा उनकी अलग अलग शख्सियत का ऐलान कर रहा है। उनके हाव भाव, नैन नक्श, त्वचा का रंग, सब कुछ अलग अलग तरीके से अतीत की अनकही कहानियां बयां कर रहे हैं। शायद ये वो लोग हैं जिनके साथ नयनसुख अपना समय बिताते थे, गोस्वामी कहते हैं।
And if you watch the fingers of the man who plays on that drum, that dholak drum,
अगर आप ढोल बजा रहे व्यक्ति की उंगलियों पर गौर करें तो आप नयनसुख की पैनी नजर और सूक्ष्म चित्रण देखकर दंग रह जाएंगे।
आमतौर पर भारतीय चित्रकला के संदर्भ में परंपरा विशेष की बात की जाती है, व्यक्ति विशेष की प्रतिभा की नहीं। लेकिन नयनसुख के चित्र महज उनके काल के नहीं बल्कि केवल उनके नजर आते हैं।
There is a kind of thrilling quality about Nansuk's work. Lightness of touch.
नयनसुख की पेंटिंग्स में एक स्पंदन है, ये आपके मन मस्तिष्क को हौले से छूती हैं। इनमें हास्य बोध है और एक और चित्रकला की उस शास्त्रीय परंपरा का सम्मान है जिसमें नयनसुख पले बढ़े, तो दूसरी ओर इससे मुक्ति का उद्घोष भी है।
This one in front of me here is Krishna with the gopis.
मेरे सामने जो पेंटिंग है उसमें कृष्ण गोपियों के साथ हैं। लजाती हुई गोपियां पेड़ों के पीछे से कृष्ण को निहार रही हैं। सामने कमल ताल है। चित्र में रंग ज्यादा चटक हैं, गहरे हरे रंगों का इस्तेमाल है। ये चित्र मिनिएचर पहाड़ी चित्रकला की पारंपरिक धार्मिक शैली के अनुरूप है। ये पेंटिंग बहुत अलग है। एक बार भी लगता ही नहीं कि ये पेंटिंग नयन सुख नहीं बनाई होगी। ऐसा क्यों? असल में 1763 में बलवंत सिंह की मृत्यु हो गई और नयनसुख को नया संरक्षक ढूंढना पड़ा। एक और पहाड़ी राज्य बसोली में बनाए गए उनके चित्रों में पारंपरिक राग माला पेंटिंग्स की अधिकता है, जिनमें संगीत के भावों, धार्मिक कथाओं और महाकाव्यों के चित्र दर्शाए गए हैं। लगता है इन विषयों का चयन उनके नए संरक्षक ने किया होगा। नयनसुख के अंतिम 15 वर्षों का कार्य उनके शुरुआती चित्रों के मुकाबले प्राणहीन है। हालांकि तब भी उन्होंने कई शानदार चित्र बनाए। इस पेंटिंग में रात का वक्त है, गांव वाले आग के चारों ओर मौजूद हैं, बस कुछ परछाइयां नजर आ रही हैं और कुछ के चेहरे आग की रोशनी में साफ दमक रहे हैं। वो हुक्का और चिलम हाथ में लिए हैं, आग की चिंगारियां पेड़ों की डालों को छू रही हैं और आसमान के तारों से भी बात कर रही हैं।
I mean the way he studies reflections and you know how shadows fall is extraordinary.
छायाओं का उनका चित्रांकन, परछाइयों की उनकी समझ बेमिसाल है। ये पेंटिंग भारतीय चित्रकला के संपूर्ण इतिहास में अनूठी है। ये कोई आम रात्रि दृश्य नहीं है। इसमें वे दिखा रहे हैं कि रात कैसे घिरती है। सूक्ष्म अभिव्यक्ति ही इस पेंटिंग का सार है।
और मेरा मानना है कि नयनसुख की सूक्ष्म अभिव्यक्ति ही तो भारतीय कला के इतिहास में एक क्रांति थी।
फैलाओ जियारा की ये कड़ी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और अब सुन लेते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
जी निखिल, बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की पीवी सिद्धू ने बकाऊ ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। पांचवीं वरीयता के साथ खेल रहे पीवी सिद्धू ने आज फाइनल में छठी वरीयता हासिल जापान के मिनात्सु मितानी को 1 घंटे 6 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद 3 गेम में 21-19, 21-23, 21-14 से मात दी। सिद्धू ने लगातार 3rd साल यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं आज दिल्ली हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग में इथोपिया के बिरहानु लगेसी ने बाजी मारी, तो महिला वर्ग में केन्या की सिंथिया लिमो ने पहला स्थान हासिल किया। भारतीय एथलीटों में पुरुष वर्ग में नितेंद्र सिंह रावत और महिला वर्ग में ललिता बाबर पहले स्थान पर रही। उधर एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के पहले डे नाइट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को आज 3 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने 187 रनों का लक्ष्य था, जो उसने डेविड वार्नर के 35 रनों की मदद से हासिल किया।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर सोमवार से शुरू हो रहे सम्मेलन से पहले दुनिया भर में कई शहरों में हजारों लोगों ने रैलियां निकाली। ये लोग सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर ठोस समझौते की मांग कर रहे हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, रियो डी जनेरो और मेक्सिको सिटी में भी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। तुर्की ने कहा है कि पिछले हफ्ते गिराए गए रूसी विमान के पायलट का शव रूस को लौटा दिया गया है। पायलट की कथित तौर पर सीरियाई विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी, जबकि दूसरे रूसी पायलट को बचा लिया गया था। नेपाल में पुलिस ने करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भारत के खिलाफ हड़ताल की योजना बना रहे थे। तुर्की को यूरोपियन यूनियन जाने वाले प्रवासियों की संख्या पर काबू करने के लिए $3.2 अरब की सहायता मिल सकती है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। स्टूडियो मैनेजर हेमंत कुशवाहा के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।